ओम शांति। आज हमारे बीच में आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलेंगे जो अपने आप में एक बहुत सुंदर शक्तिशाली मोटिवेशन है, प्रेरणा है। आदरणीय सुधा दीदी जी हमारे बीच में है। हम सभी करतल ध्वनि के साथ आपका अभिनंदन करते स्वागत करते हैं। आप वर्तमान समय 1989 से ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी मास्को में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बचपन से ही आपकी आध्यात्मिकता में विशेष रुचि रही है। 50 वर्षों से भी अधिक समर्पित जीवन में आपने अपनी योगनिष्ठ धारणामूर्त विशेषता संपन्न जीवन से कई आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त की है। आपने रशिया, यूक्रेन आदि अनेक देशों में अपनी सेवाएं प्रदान की है। आपके कुशल नेतृत्व में आपने वुमन ऑफ फैमिली वैल्यूज, विजडम फॉर पीस, हार्मोनी एंड हैप्पीनेस, गोल्डन मॉर्निंग जैसे कई इंटरनेशनल रिट्रीट संपन्न किए हैं। आपने पीस इन अवर हैंड इस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के अंतर्गत रशिया में 50 से भी अधिक कुशल प्रोग्राम का आयोजन किया है। ऐसी दिव्यता की आभा से आलोकित, ज्ञान सुधा से सुसज्जित, प्रेरणा की मूर्ति आदरणीय सुधा दीदी जी से आज हम सुनेंगे संपन्नता की ओर बढ़ते कदम। आदरणीय सुधा दीदी जी।
ओम शांति। सब फ्रेश है एकदम? नाश्ता अच्छे से किया? एकदम अच्छे से ज्यादा तो नहीं किया हा? क्योंकि अगर ज्यादा स्वाद होता है तो ज्यादा भी खाया जाता है, तो फिर ज्यादा खा ले तो फिर नींद आ जाती है। इसलिए अगर कभी नींद बीच में आने लगे तो थोड़ा सा कान को मसल लीजिए, ठीक है? अच्छे से कान को मसल लेंगे ना तो फिर उसको जब रेड हो जाएगा तो फिर नींद नहीं आएगी, ठीक है? थोड़ा थोड़ा पुल कर लेना होता है, ऊपर नीचे साइड में अंदर, तो फिर वो नींद नहीं आती है। एक्सरसाइज हो जाती है ना सारे बॉडी की। तो चलिए हम ये अभी अलर्ट होकर के सुनेंगे इस टॉपिक पर, जैसे बहन जी ने बताया, संपन्नता की ओर बढ़ते हुए कदम। हम सब बाबा के पास आए तो इसलिए हैं, है ना? इसीलिए आए हैं ना हम। पहले ही दिन जब कोर्स करने आए थे तो हमें ये बता दिया गया था कि हमारे विद्यालय का लक्ष्य क्या है। हमें ये बताया था कि मनुष्य से देवता बनना है, और फिर थोड़ा और स्पष्टीकरण करते हुए ये कहा कि नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। और भी अधिक स्पष्टीकरण हुआ तो ये बताया कि नर और नारायण में या नारी और लक्ष्मी में अंतर किस बात का है। ये बता दिया गया कि हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनना है। ये है अंतर। आज के मनुष्य में ये क्वालिटीज नहीं है। हमें मनुष्य से देवता बनना है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, सर्वगुण संपन्न, सारे ही गुण और उसमें भी संपन्न 100%। 16 कला संपूर्ण, अव्यक्त बाप दादा ने एक बार कहा था, 16 कोई ये गिनती नहीं है। कोई पूछे 16 कलाएं कौन सी हैं, कहने को तो कह सकते हैं, 16 कलाएं गिन सकते हैं, परंतु जो 16 नंबर है ये परफेक्शन का नंबर है। बाबा ने उसमें स्पष्ट किया कि जिस व्यक्ति का हर कर्म आर्ट होता है, कला होती है, उसका चलना भी कला है। चलते तो सभी हैं, लेकिन कोई ठप 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 करके चलता है, शोर मचा के चलता है, कोई ऐसा चलता है जैसे आवाज भी नहीं आती, फरिश्ते की तरह। क्या हाल चाल है? तो बाबा कहते हैं उनको, बोलो मेरा हाल खुशहाल है, और कैसी चाल है? फरिश्तों जैसी चाल है। तो ये कला हो जाती है, चले मगर फरिश्तों की तरह, बोले तो ऐसे जैसे मुख से मोती या फूल झड़ते हैं। ये कला है। जिसका हर कर्म कला हो जाता है उसको कहते हैं 16 कला संपन्न। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात जिसमें विकारों का अंश भी नहीं है, उसको पता ही नहीं कि वो क्या होता है, नॉलेज ही नहीं है उसको, वो है संपूर्ण निर्विकारी। ऐसा बनना है हमको। हाँ, बहुत ऊंची मंजिल है ना। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम यानी नेचुरली डिसिप्लिन्ड, हमें किसी को कहना नहीं पड़े कि आप ये काम ऐसे मत कीजिए। जो देवता होते हैं वो स्वाभाविक रूप से डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनके हर कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां नियंत्रण में होती हैं। उनको लगता नहीं है कि हम अपने पर जोर लगा रहे हैं, अपने को प्रेशर डाल रहे हैं, नहीं, नेचुरली। वो हमको वो बनना है जब हमारा मन बुद्धि हमारे संस्कार पूर्णता हमारे नियंत्रण में हो, और फिर संपूर्ण अहिंसक, दृष्टि से भी हिंसा न हो। और तो बात छोड़ ही दीजिए, संकल्पों से भी नहीं। तो कितनी ऊंची मंजिल है। संपन्नता की ओर बढ़ना है, हमें संपन्न बनना है। शब्द तो सिंपल है लेकिन मंजिल बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। तो उस ऊंची मंजिल पर जब पहुंचना होता है तो समझ में आता है जितनी ऊंची मंजिल उतनी ज्यादा चुनौतियों का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कोई आबू रोड तक आया और कोई माउंट आबू तक आया, फिर माउंट आबू में भी कोई गुरु शिखर तक जाना है, फर्क है ना। तो जितना ऊंचा जाएंगे, कोई को हिमालय पर्वत पर जाना है तो जितनी ऊंची मंजिल उतनी अधिक चुनौतियां। परंतु ये जो शब्द है ना, चुनौती, चैलेंज, ये दादी जानकी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि क्या तुम चैलेंज चैलेंज करते रहते हो। क्यों? क्योंकि संपन्नता की राह में चलना है, ये किसने चूज किया, ये किसकी चॉइस थी, ये किसका निर्णय था? हमारा था। हम पर किसी ने प्रेशर नहीं डाला। हमारे सामने दुनिया भी थी, एक वो लाइफस्टाइल है और एक ये लाइफस्टाइल है। हमको वो लाइफस्टाइल दिख रहा था, हम उसमें जी रहे थे, और बाबा ने आकर किसी के भी थ्रू हमको ये लाइफस्टाइल दिखा दिया कि ऐसा भी होता है। अब चॉइस आपकी है, इधर चलूं या उधर चलूं, तो किसने चूज किया? किसने किया? हमने किया। डिसीजन किसने लिया? हमने लिया। क्योंकि ये हमारी चॉइस है और हमारा डिसीजन है, इसलिए ये कहना कि हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये लैंग्वेज ही रॉन्ग है। ये लैंग्वेज ही रॉन्ग हो जाती है। चैलेंजेस है नहीं, ये तो जिसको बाबा कहते हैं गेम्स है, खेल है। लेकिन ये चुनौतियां खेल उनको लगती हैं जिनको संपन्न बनने का उमंग होता है, उत्साह होता है, मुझे संपन्न बनना है। आज सुबह कुछ भाइयों को दिखाया ना कि उन्होंने गोल्ड मेडल लिया, उनको गोल्ड मेडल मिला बॉडी बिल्डिंग में, वेजिटेरियन होते हुए भी। अब ऐसे ही मिल गया, सबको क्यों नहीं मिला? सबको मिल सकता था, बीकेस तो सभी हैं, वेजिटेरियन तो हम सभी हैं, हम सबको तो नहीं मिला, किसी को तो मिल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया कि मुझे गोल्ड मेडल लेना है, मुझे संपन्न बनना है। जिसको ये उमंग उत्साह होता है उसको हिम्मत होती है, विश्वास होता है, आत्मविश्वास, अपनी सफलता का निश्चय होता है। लेकिन साथ साथ बहुत ही जरूरी है धीरज, धीरज भी होता है। क्योंकि सक्सेस कभी भी फौरन नहीं मिलती, कभी भी किसी भी फील्ड में सक्सेस फौरन नहीं मिलती। हम जब चलना भी सीखते हैं तो बहुत बार गिरते हैं, बहुत बार गिरते हैं। जब खाना भी सीखते हैं तो चम्मच से आधा तो नीचे गिर जाता है, होता है ना। तो सक्सेस फौरन कभी भी नहीं मिलती, लेकिन धीरज रखना होता है, मिलेगी जरूर। और उस धीरज को मेंटेन करते हुए सब समर्पण मयता और ईमानदारी से पुरुषार्थ करना होता है। तो संपन्नता की ओर हमें बढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहले ये कुछ क्वालिटीज चाहिए, उमंग उत्साह। अपने से पूछना है मेरे में उमंग, मुझे संपन्न बनना है, या सिर्फ लेबल है कि मैं बीके हूं? हिम्मत है, एग्जामिनेशन तो होंगे, कठिनाइयां तो आएंगी, विघ्न भी आएंगे, लेकिन हिम्मत है, विश्वास है, धीरज है, अपनी सफलता का निश्चय है, और हम दिल से, जान से, समर्पण मयता से पुरुषार्थ करने को तैयार हैं। पुरुषार्थ करने की विधि बाबा बताते हैं, जो हमारे टीचर हैं, जो या गाइड है हमारे संपन्नता की ओर ले जाने वाले शिव बाबा, वो परम शिक्षक, सुप्रीम, बुद्धिवानों का बुद्धिवान, परफेक्ट और बहुत ही स्नेही टीचर है, बहुत ही स्नेही टीचर है। सभी टीचर्स स्नेही नहीं होते हैं, बहुत स्नेही टीचर है। इसलिए बाबा ने एक बार कहा था कि जब मैं आता हूं परम धाम से तो मैं बहुत रुचि से पढ़ाने आता हूं, इंटरेस्ट है बाबा को, बाबा बहुत रुचि से पढ़ाने आता है। अंडर प्रेशर नहीं, मजबूरी से नहीं, रुचि से पढ़ाने आता है। तो हमारा टीचर भी ऐसा है, और केवल वो मंजिल नहीं दिखाता, वो राह भी दिखाता है, और हर समय हर पल हमारी मदद करने के लिए, हमें शक्ति देने के लिए तैयार रहता है। बाबा कहते हैं, बाबा कहो और मैं हाजिर, हर पल। ऐसा है हमारा टीचर, ऐसा है हमारा गाइड, उसका हमें अनुभव करना है। केवल ये शब्दों तक रह जाएगा तो फिर इतना उसका मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि ये जो कदम है संपन्नता की ओर बढ़ते हुए, मैं मुख्य रूप से तीन बातों को लूंगी, तीन बातें। उसमें जो संपन्नता, अगर हम शिव बाबा को देखें जो हमारे सामने हैं, बाबा की स्थिति को, बाबा तो ऑलवेज एटर्नली संपन्न है ना, देवता तो बनते हैं, हम ही बनते हैं, देवता बन जाते हैं। शायद हमें याद है कि नहीं याद है कि हम कैसे थे जब देवता थे या कैसे बनेंगे, लेकिन शिव बाबा तो हमारे सामने है, ब्रह्मा बाबा का परफेक्ट रूप भी हमारे सामने है। तो जो फर्स्ट, जिसको मैं माइलस्टोन, जैसे माइलस्टोन समझते हैं क्या होता है, किलोमीटर जब चलते हैं ना तो लिखा हुआ होता है इतना किलोमीटर तय हो गया, इतना हो गया। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट माइलस्टोन है संपन्नता की ओर, वो है डबल लाइट स्टेज। डबल लाइट स्टेज, लेकिन उस डबल लाइट स्टेज को प्राप्त करने के लिए चलना पड़ेगा ना। और वो चलना क्या है, दो बातें हैं। पहली बात, मेरा पढ़ाई में यानी मुरली में कितना इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट है। एक होता है फॉर्मेलिटी, भक्ति वाला संस्कार, लेकिन मेरा पढ़ाई में थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों में कितना इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट से हम सुनते हैं, कितना इंटरेस्ट से उसको समझने की कोशिश करते हैं, कितना हम इंटरेस्टेड हैं होमवर्क करने में, मुरली में से होमवर्क करने में, और कितना इंटरेस्टेड हैं मुरली की उन पॉइंट्स को लाइफ में अप्लाई करने में। मुझे है इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है, या केवल सुनने का इंटरेस्ट है, और वो भी कहने के लिए। शुरू से लेके अंत तक, या बीच में मीठे मीठे सिक्की लदे में भी पहुंच गए तो भी चलेगा। धारणा का मुख्य सार दीदी ने पढ़ना शुरू किया, हमने फटाफट डायरी लिखाई, नोट कर लिया। मैं कितना इंटरेस्टेड हूं पढ़ाई में, पढ़ाई तो पद का आधार है ना। दुनिया में कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो एक जंगली जानवर को इंसान बनाती है, शिक्षा जंगली जानवर को इंसान बनाती है, लेकिन जो बाबा की शिक्षा है, स्पिरिचुअल एजुकेशन है, वो इंसान को बंदर से मंदिर लायक बनाती है। इंसान को कहने में इंसान, मगर बंदर जैसे से मंदिर लायक बनाती है। उसमें मेरा कितना इंटरेस्ट है। संपन्नता क्या है, मेरा जीवन मंदिर लायक हो, और उसका बेसिस है पढ़ाई। मेरा उसमें कितना इंटरेस्ट है, और दूसरा है योग। योग में मेरा कितना इंटरेस्ट है, इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगर योग में इंटरेस्ट है ना तो हमको साइलेंस में बहुत इंटरेस्ट होगा, हम साइलेंस लवर्स होंगे, हमको शोर मचाना, ज्यादा बातें करना, बाह्यमुखी होना अच्छा नहीं लगेगा, ऊंचा ऊंचा हम नहीं बोलेंगे। योग में बाबा को साइलेंस बहुत पसंद है, जहां साइलेंस होती है वहां बाबा आ जाते हैं। तो योग किससे है, उससे जिसको साइलेंस पसंद है। तो मुझे पसंद है, योग में मेरा कितना इंटरेस्ट है, मेरी दिनचर्या को मेंटेन करने में, एक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी की दिनचर्या क्या होती है, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे घर का ध्यान दे रहे हो, चाहे सेंटर पे रह रहे हो, चाहे मधुबन में रह रहे हो, तो कुछ चीजें कॉमन है। मान लीजिए अमृत वेला सबके लिए है, मुरली क्लास सबके लिए है, ट्रैफिक कंट्रोल सबके लिए है, रात्रि का योग सबके लिए है, एटलीस्ट ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, 8 घंटे योग ये सब चलो पीछे, लेकिन जो ये वाली बातें हैं दिनचर्या में, इस पर हमारा ध्यान है मेरा इंटरेस्ट। तो ज्ञान और योग में जब तक हम इंटरेस्टेड नहीं होते, तब तक हम डबल लाइट नहीं बन सकते। 3-4 दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो ये दो हैं, ज्ञान और योग। क्योंकि ज्ञान क्या है, कहते हैं नॉलेज इज लाइट, ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान बुद्धि को एनलाइटेंड करता है, प्रकाशित करता है, ज्ञान से बुद्धि में लाइट आ जाती है। जब बुद्धि में लाइट आ जाती है तो अगर कुछ कचरा उसमें जाने भी लगे ना तो वो फौरन दिखाई दे जाता है, हम उसको अंदर जाने नहीं देते, क्योंकि ज्ञान माना समझ। ज्ञान केवल आत्मा परमात्मा का रचयिता और रचना का, तीनों लोकों का, तीनों कालों का नहीं, ज्ञान माना समझ। तो ज्ञान से लाइट आती है, तो अगर मैं ज्ञान में इंटरेस्टेड हूं तो लाइट आएगी ना, और योग में अगर इंटरेस्टेड हूं तो सबसे पहली बात प्यूरिटी, प्यूरिटी की लाइट आएगी, क्योंकि योग से विकर्म विनाश होंगे, आत्मा प्योर बनती जाएगी, तो प्यूरिटी की लाइट आ जाएगी। विकर्म विनाश होंगे तो बोझ खत्म होगा, लाइट, लाइटनेस, हल्कापन आ जाएगा। तो डबल लाइट क्या होता है, लाइट एंड लाइट, हम प्रकाशित हैं और हल्के हैं। तो अभी पूछना है अपने आप को, कोई परिस्थिति में हम हैवी होते हैं, कोई भी परिस्थिति में हम टेंस हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं, भारी हो जाते हैं, हमको तो संपन्न बनना है, और संपन्न बनने का पहला माइलस्टोन है डबल लाइट। और अगर हम हैवी होते हैं, माना हमको चेक करना है कहीं ज्ञान योग में इंटरेस्ट कम तो नहीं है, समझना है उसको, क्या होता है इंटरेस्ट। आपको अपने स्कूल डेज को याद कीजिए, स्कूल कॉलेज बिजनेस जब आपने शुरू किया, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होता है उसमें आपको धुन लग जाती है, धुन लग जाती है कि मुझे ये करना है, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता, आपके आगे कोई विघ्न आ नहीं सकता, धुन लग जाती है। तो मुझे अगर इंटरेस्ट है तो मुझे वो धुन लग जानी चाहिए। मेरा योग नहीं लग रहा लेकिन मुझे इंटरेस्ट है, मुझे समझना है कैसे योग लगता है, मुझे उसके योग के क्लास को मिस नहीं करना है। वो कैसे होता है, सबको वो कैसे अनुभव होता है, तो सबसे पहले तो इसको चेक करने की जरूरत है, मैं इंटरेस्टेड हूं या नहीं। और अगर नहीं हूं तो मुझे वो इंटरेस्ट क्रिएट करना है अगर संपन्नता की ओर बढ़ना है। अगर संपन्नता की ओर बढ़ना है तो वो इंटरेस्ट क्रिएट करना है। आप आते हैं क्लास में, आप देखिए क्लास में आके आप कैसे बैठे, कोई बैठते हैं आधे लेटे हुए। अब ये तो कोई पढ़ने का स्टाइल ही नहीं होता, पढ़ता है आदमी सीधा होके बैठता है, स्ट्रेट हमारा जो बैक है ना, पढ़ने आए हैं हम कोई सोने थोड़ी आए हैं आधा सोने के लिए। लेकिन अगर बैठे ही ऐसे शुरू से लेके, तबीयत खराब है तो एक अलग बात है, अगर शुरू से ऐसे बैठ गए समझ लीजिए इंटरेस्ट नहीं है। टाइम पास करने आए हैं, टाइम पास करने आए हैं। इंटरेस्ट है तो हम नोटबुक पेन लेके आते हैं, पेन को चेक करके आते हैं, पेन में वो लिखता है कि नहीं लिखता है। ऐसा नहीं कि पड़ोसी को फिर कहते हैं भैया तुम्हारे पास पेन है कोई दूसरा, डायरी में पेपर है कि नहीं है, वो पहले से एडवांस में चेक करके आते हैं। ये पढ़ाई का शौक होता है ना, तो ज्ञान और योग, तो उस फर्स्ट माइलस्टोन डबल लाइफ स्टेज को पाने के लिए हमें ये दो सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट क्रिएट करना है और उसको समझना है कि उसकी क्वालिटीज क्या होती हैं। अब दूसरी बात, दूसरा जो माइलस्टोन है संपन्नता का, मुझे ऐसा लगता है वो है, चाहे हम बाबा को देखें चाहे देवताओं के नाम से, देवता मना देने वाला वो देते तो नहीं है क्योंकि वहां कोई लेने वाला नहीं है, परंतु वो दे देकर देवता बन गए। बाबा तो है ही दाता, और जो फरिश्ते हैं वो भी संपन्न होते हैं, तो फरिश्ते भी दाता ही होते हैं। बचपन में हम परियों की कहानियां सुनते थे, तो परियां भी देने ही आती हैं, देते हैं। तो ये जो सेकंड माइलस्टोन है संपन्नता का वो है दातापन का संस्कार, अर्थात कल्याण करने का संस्कार। बाबा को हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, शिवम कल्याणकारी है। ये संपन्नता का चिन्ह है शिवम, जिस जो फुल है वही तो दे पाएगा, और जो देना जानता है वो फुल हो जाएगा। जो देता है उसको प्रकृति भी देती है, वो ऑटोमेटिकली ये लॉ है, देना ही लेना है। प्रकृति भी देती है, भगवान भी देता है, और उसका भाग्य बहुत ऊंचा बन जाता है। तो इसलिए अगर मुझे इस माइलस्टोन तक पहुंचना है, बाबा कहते हैं दानी बनो, महादानी बनो, वरदानी बनो, यह है सेकंड माइलस्टोन। तो इसको पाने के लिए मुझे देखना है कि मैं सेवा में कितना इंटरेस्टेड हूं, हर प्रकार की सेवा, तन मन धन वचन और कर्म सब। ऐसा नहीं कि मैं तो भाषण तो बहुत अच्छा करती हूं बस मेरी तो यही सेवा है, नहीं, सब प्रकार की सेवा। तन मन धन वचन कर्म, हर एक में मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है। क्योंकि सेवा करना माना ही अपने को निरअहंकारी बनाना। निरअहंकारी ही सेवा कर सकता है। काम बहुत लोग कर सकते हैं, सेवा निरअहंकारी कर सकते हैं। एक होता है ड्यूटी को फॉलो करना, फुलफिल करना, काम करना, एक होता है सेवा करना। सेवा निरअहंकारी करते हैं और बाबा निरअहंकारी है, ब्रह्मा बाबा भी निरअहंकारी। दादी प्रकाशमणि जी का भी 3 पेट वर्ड्स थे, निमित, निर्माण और निर्मल वाणी। तो निमित भाव और निर्माण माना नम्रता, हम्बल, ह्यूमिलिटी, ईगोलेस, निरअहंकारी। तो अगर मुझमें कोई भी प्रकार का अहंकार है, हम कुछ करते भी हैं, शायद बहुत कुछ भी करते हैं, उसको सेवा नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर हम अहंकार से मतलब मेंटेन करते हुए कुछ करते हैं तो हमें जरूर उसके रिटर्न की आशा रहेगी, कोई हमको अप्रिशिएट करे, हमारी प्रेज करे, और नहीं तो कुछ ताली बजा दे, और नहीं कुछ तो टोली खिला दे, और नहीं कुछ तो पानी का ग्लास ही पूछ ले। तो कुछ तो आशा रहती है, और अगर वो आशा पूरी नहीं होती तो उदासी आती है। जिसको बाबा कहते हैं, जिसको अभिमान होता है वो बहुत जल्दी अपमानित हो जाता है और औरों का भी अपमान करने में वो देरी नहीं करता। तो मुझे सेवा में, शब्द सेवा अंडरलाइन कीजिए, सेवा भाव बहुत से मिसाल है हमारे सामने, लौकिक में भी हैं, अलौकिक परिवार में भी हैं, बाबा तो है ही है। मेरे में सेवा भाव कितना है, सेवा में कितना इंटरेस्ट है, सेवा में त्याग इंक्लूडेड है, बिना त्याग के सेवा नहीं होती। अगर मेरे पास 4 चपाती है और कोई आया उसको मुझे 2 चाहिए, तो दूसरे को 2 देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे पास खुद के पास ही 1 है और मुझे 2 चाहिए, लेकिन फिर भी कोई आया है भूखा, तो उस 1 में से आधा शेयर कर लेना, वो सेवा है। अगर हम ये कहते मेरे खुद के पास ही 1 है, मुझे ही तो पूरा नहीं है, तो वो सेवा नहीं है। देने की भावना, सहयोग की भावना, जगदीश भाई साहब कहा करते थे कि यूं तो हम 4 सब्जेक्ट्स कहते हैं, परंतु मैं समझता हूं कि एक 5वां सब्जेक्ट सहयोग ये होना चाहिए, इसको अलग करना चाहिए। सहयोग, देने की भावना। तो ये देखना है हम, अगर मान लीजिए मुझे फॉर एग्जांपल वचन की सेवा करनी नहीं आती, हम तन की सेवा बहुत करते हैं, धन से भी जितना हो सकता है करते हैं, अपने चरित्र व्यवहार कर्मों से भी करते हैं, लेकिन वचन की नहीं आती, या किसी को दूसरी कोई और नहीं आती, बहुत कुछ करता है लेकिन उसको समझ लीजिए तन से सेवा करने का इतना अभी शौक नहीं है या उसको आता नहीं है, खाना बनाओ नहीं मुझे आता ही नहीं, नहीं आता तो सीखो, वचन से सेवा नहीं करनी आती सीखो, ये कह देना कि मुझे आता ही नहीं और छूट जाना, ये सेवा में इंटरेस्ट नहीं है। अगर नहीं आता तो मुझे सीखना है। ये संपन्नता का साइन है। संपन्न वही बनता है जो सीखता जाता है। हम कोई भी अपने को नहीं कह सकते मैं परफेक्ट हूं ऑलरेडी, नहीं, हम सबको सीखना है। जिस चीज में हम कंपैरेटिवली कमजोर हैं उसको मुझे सीखना है। जो मुझे आता है ऑलरेडी वो तो बहुत खुशी की बात है, उसको तो हमको मैक्सिमम यूज करना है। बाबा कहते थे अपनी विशेषता को यूज करो ईश्वर के कार्य में तो विशेष बन जाओगे, और विशेष माना संपन्न बन जाओगे। भगवान की नजरों में विशेष बनना कोई छोटी बात नहीं ना। यूं तो हम सभी विशेष हैं, परंतु विशेष में भी विशेष बन जाओगे जब आप अपनी विशेषताओं को ईश्वर के कार्य में प्रयोग करोगे। और जो विशेषता नहीं है, जो कमजोरी है, कमी है, माना कोई चीज नहीं आती है, मुझे इंटरेस्ट है, मुझे उसको सीखना है, क्योंकि किसी भी समय कभी भी कहीं पर भी कोई भी जरूरत पड़ सकती है। मेहमान आए हैं, उनको भोजन खिलाना है और भोजन बनाने वाला व्यक्ति है नहीं, तो हम कहें हमको तो आता ही नहीं, तो मेहमान को भूखा रखें? नहीं, ये तो सेवा नहीं हुई। और नहीं कुछ तो खिचड़ी तो बनाना सीख लेना चाहिए। इट्स सिंपल 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 कोई चीज, उससे शुरू करें। तो ये है सेकंड माइलस्टोन। और अब थर्ड जो है, थर्ड माइलस्टोन जिसकी मैं बात करना चाहती हूं आज, मुझे ऐसे लगता है कि जहां बैलेंस है, संतुलन है, वहां संपन्नता है, वो परफेक्शन है। जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो संपन्नता खत्म हो जाती है। मिसाल के तौर पे बाबा कहते हैं एक बैलेंस न्यारा और प्यारा। बाबा संपन्न है ना, बाबा न्यारा भी है और प्यारा भी है, देवता भी न्यारे और प्यारे हैं, फरिश्ते भी न्यारे और प्यारे हैं, ये बैलेंस है। द्वापर युग में क्या हुआ, ये बैलेंस बिगड़ गया। जब मनुष्य आत्माएं, जो देव आत्माएं थी, वाम मार्ग में गईं, विकारी बने, दुख शुरू हुआ, अशांति आ गई, सफरिंग्स आ गई, तो बाद में सन्यास धर्म शुरू हुआ। जब सन्यास धर्म शुरू हुआ तो क्या हुआ, या तो न्यारे हो गए और या तो प्यारे हो गए, अटैच्ड हो गए, डिवाइड हो गया। धर्म और राजनीति भी डिवाइड हो गई। धर्म की सत्ता एक हाथ में चली गई और राज की सत्ता दूसरे के हाथ में चली गई। ये बैलेंस बिगड़ गया। राज्य जो था वो अधर्मी हो गया। तो जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो संपन्नता खत्म हो जाती है। तो जो थर्ड माइलस्टोन है वो है बैलेंस। बाबा ने हमको बहुत सारे बैलेंसेस की बात की है, बहुत सारे, पूरी लंबी लिस्ट बना सकते हैं आप उसकी। उसमें सबसे पहला बैलेंस अगर हम सोचें तो बाबा कहते हैं स्वयं की सेवा और सर्व की सेवा। और तो ढेर। मैं बैलेंसेस पर अभी क्लास नहीं करा रही, आप वो आज होमवर्क कर लीजिए, घर जाके लिस्ट बना लीजिए, कितने सारे बैलेंस पापा कहता है। सबको मालूम है लव एंड लॉ का बैलेंस पापा कहता है, न्यारा और प्यारा, ये बैलेंस बहुत जरूरी है। अब उसमें क्या, जैसे मैं मिसाल देना चाहती हूं कि जब हम लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, बीकेज हों या लौकिक लोग हों, हमें बहुतों की कमियां दिखाई देती हैं, बहुतों में विशेषताएं दिखाई देती हैं, लेकिन कमियों को देखने के कारण अगर हम थोड़ा सा, हमको उनसे नेगेटिव फीलिंग आती है, थोड़ी सी अंदर से लगता है क्या है ये व्यक्ति, डिसलाइक की फीलिंग आती है, यानी हम उस व्यक्ति की कमियों से इन्फ्लुएंस्ड हो गए, प्रभावित हो गए, और उस व्यक्ति के प्रति हमारा प्यार खत्म हो गया, न न्यारे रहे न प्यारे रहे। न्यारे इस सेंस में हो गए कि इसमें तो कमी है, इससे मेरा कोई लेन देन नहीं, अलग हो गए, सेपरेट हो गए। डिटैचमेंट और सेपरेशन ये दो अलग चीजें हैं। आइसोलेशन, सन्यासियों की तरह अलग हो गए वो नहीं, लेकिन कमल पुष्प की तरह डिटैच्ड हैं, न्यारे हैं, वो फर्क है। सन्यासियों की तरह गुफा में जाके अलग होना और कमल की तरह परिवार से कनेक्टेड होते हुए भी डिटैच रहना, ऊपर रहना, वो अलग बात है। तो उसमें कमियां हैं, इसलिए हम, मेरा और उसका रिश्ता सन्यासी वाला है, मेरा उससे कोई लेन देन नहीं। अब लेन देन नहीं तो प्यारे तो बात ही खत्म हो गई। और किसी में विशेषताएं हैं, ओ इसमें इतनी सारी विशेषताएं हैं, उससे भी हम बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो गए, उसके प्रति अटैचमेंट हो गया, प्यार होते होते अटैचमेंट हो गया। और आज बाबा ने क्या कहा, किसी भी देहधारी को याद करना, क्या कहा आगे, क्या बोला, किसी भी देहधारी की याद निष्फल है, निष्फल है। और दूसरा बहुत बहुत ही स्ट्रांग शब्द है, किसी भी देहधारी की याद आपको दुर्गति में ले जाएगी। निष्फल तो चलो फिर भी कंपैरेटिवली लाइट है, दुर्गति में ले जाएगी, वो तो डिग्रेडेशन, फॉल हो जाएगा। हम तो संपन्न बनने चले, हम तो ऊपर जा रहे थे, ये तो नीचे चले गए। अगर हमने ये लेसन नहीं सीखा साक्षीपन का, अगर हमने ये लेसन नहीं सीखा, अर्थात ये नहीं सीखा कि ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट अपना है, कहने को तो हमको पता है ये बात, पर हमने सीखा नहीं। पता है, समझ भी लिया है, मगर सीखा नहीं। तो हम प्रभावित हो जाते हैं, या तो अटैच हो जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं, न्यारापन और प्यारापन नहीं रहता। तो जो, अगर हमें ये बैलेंस लाना है, इस माइलस्टोन तक पहुंचना है, तो मुझे ये पूछना है अपने से, मुझे स्व परिवर्तन में कितना इंटरेस्ट है, क्या मैं इंटरेस्टेड हूं अपने परिवर्तन में, मैं अपने परिवर्तन में मैं इंटरेस्टेड हूं। हम उनके परिवर्तन में इंटरेस्टेड हैं, विश्व के परिवर्तन में इंटरेस्टेड हैं, अपने परिवर्तन में इंटरेस्टेड हैं। फॉर्मूला तो ये है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, लेकिन हम विश्व परिवर्तन अर्थात वो लोग जो हमारे साथ रहते हैं उनके परिवर्तन में इंटरेस्टेड बहुत हैं, पर अपने परिवर्तन में हम कितने इंटरेस्टेड हैं, यह धारणा का सब्जेक्ट। स्व परिवर्तन में इंटरेस्टेड, माना स्व दर्शन में इंटरेस्टेड। स्वदर्शन, अपने को देखो। वो संत कबीर ने क्या कहा, बुरा जो देखन मैं चला, हाँ आगे क्या, बुरा ना मिलिया कोई, फिर आगे जब दिल खोजा अपना। देखो सबको आता है ना, स्वदर्शन। स्व परिवर्तन में इंटरेस्टेड माना स्वदर्शन में इंटरेस्टेड, और फिर स्वचिंतन में इंटरेस्टेड, और साथ साथ प्रभु चिंतन में इंटरेस्टेड। और अगर औरों के परिवर्तन में इंटरेस्टेड हैं तो हम पर दर्शन में इंटरेस्टेड रहते हैं। उसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। हम सब मास्टर्स हैं करेक्शंस देने में, और पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, तो फिर बैलेंस तक नहीं पहुंचेंगे ना, फिर तो न्यारे और प्यारे नहीं बन सकते हैं। और अगर हम स्वदर्शन और स्वचिंतन में इंटरेस्टेड हैं तो माना हमें एकांत बहुत अच्छा लगता है, एकांत प्रिय है। व्यर्थ की झरमुई झंगमुई, जैसे आज बाबर ने कहा, उसमें हम टाइम नहीं लगाते हैं। हम मिलनसार हैं, सूखे सन्यासी नहीं, खुश रहते हैं। ऐसा नहीं चेहरा ऐसा बना हुआ रहे देख के ही व्यक्ति डर जाए, नहीं ऐसा नहीं। एकांत प्रिय और मिलनसार, ये दो, ये भी बैलेंस है। हमें एकांत भी बहुत प्रिय है, हम कोशिश करते हैं, इसलिए हम बोर नहीं होते हैं। बोर कौन होता है, जो टॉकेटिव है, बहुत बातें करने का शौक है उसको, उसको बातें करने वाला ही कोई नहीं मिल रहा, तो फिर वो मोबाइल से ही बातें करता रहता है, वो इंटरनेट उसको दोस्त बन जाता है उसका। आजकल के बच्चों का यही हाल है, नहीं बाबा कहते हैं एकांत प्रिय, जब मौका मिले एक के अंत में चले जाओ, एकाग्र चित्त हो जाओ, गहराई से सोचो आज बाबा ने ये कहा मेरे लिए क्या कहा, तो जो खुशी मिलेगी उस समय और उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे तो आपके चेहरे पर इतना चीयरफुलनेस होगा, इतनी खुशी होगी कि दूसरे को देख करके भी मुस्कुराहट आ जाएगी। ये भी बैलेंस है, और साथ साथ जिसको बाबा कहते हैं बैलेंस किसका, सत्यता और सभ्यता। ये बैलेंस, सत्यता और सभ्यता का बैलेंस। सच हम सबको पसंद है, तो पहले तो हम खुद देखें हम कितने सच्चे हैं, और अगर दूसरा व्यक्ति कोई सत्य नहीं है तो हमारा उनके साथ फिर भी कितना सभ्य व्यवहार है। उनकी असत्यता के कारण अगर हम अपनी सभ्यता को छोड़ते हैं तो माना हम अपनी सत्यता को छोड़ते हैं। समझा मेरी बात को, किसी की असत्यता के कारण अगर हम अपने सभ्य सिविलाइज्ड मैनर्स को छोड़ देते हैं, अपनी सभ्यता को छोड़ते हैं, तो ना हम अपनी सत्यता से नीचे आ जाते हैं। हमारा सत्य स्वरूप तो बहुत ऊंचा है, आज सुदेश दीदी ने कहा ना, अपना स्वरूप, अपना स्वदेश और अपना स्वधर्म, इनकी स्मृति। तो मुझे कितना इंटरेस्ट है अपने मन और बुद्धि को इन पॉजिटिव स्मृतियों में बिजी रखने का, अपने मन और बुद्धि को कितना हम बिजी रखते हैं, कितना हम उनको काम देते हैं, या अगर कुछ काम नहीं देंगे तो वो नटखट हो जाएंगे ना, मन क्या छोटे बच्चे की तरह है, उसको खिलौना मत दीजिए तो कुछ ना कुछ उठा के तोड़ा फोड़ी करेगा और फिर बुद्धि भी उसके पीछे भाग जाती है। तो मन बुद्धि को व्यस्त करना है किसमें, श्रेष्ठ स्मृतियों में। स्मृतियों की तो एक लिस्ट है लंबी, स्मृति से स्थिति बनती है। तो इसलिए अब हम अपने इंटरेस्ट्स को चेक करेंगे कि किसमें हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, ये चार चीजों में, ज्ञान, योग, सेवा और स्व परिवर्तन, इनमें इंटरेस्टेड हैं या इसके अलावा कुछ और में इंटरेस्टेड हैं। तो उससे मालूम पड़ेगा कि हम संपन्नता की ओर कितना आगे बढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट तो हम सबको जरूर है, तभी हम यहां हैं। लेकिन बाबा ने जैसे बहुत समय से कहा है, आज भी कहा, कल भी कहा था, इससे पहले भी, एक बात रह जाती है, वो है डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। इंटरेस्ट तो है लेकिन डीप इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो है लेकिन डीप इंटरेस्ट, संकल्प तो है लेकिन दृढ़ संकल्प, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। मुझे करना ही है, आज प्लान बना ले दिन का, शुरू कर दे दृढ़ता से, मुझे मुरली रिवाइज करनी ही है। उसमें से 5 पॉइंट्स नोट करने ही हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ प्लान बनाइए, मुझे योग के लिए स्पेशल समय, जब शाम का योग शुरू होगा जरूर पहुंचना ही है टाइम पर, ऐसा नहीं कि योग का टाइम पूरा हो गया फिर हम आ गए क्लास सुनने, नहीं। कहीं किचन में, कहीं और किसी डिपार्टमेंट में सेवा करने के लिए जरूर जाना ही है, चाहे आधा घंटा। सिर्फ शॉपिंग करने चले गए, घूमने चले गए, तो सारी जिंदगी यही तो किया है, सारी जिंदगी 84 जन्म, चलो 83 नहीं 63 तो किया ही है, ये तो लास्ट है, इसको लगा दे हम सेवा में, हमारा भाग्य बहुत ऊंचा बन जाएगा। तो दृढ़ता से, जिसको बाबा ने कल बहुत सुंदर कहा था कि दृढ़ता मनमना भव का मंत्र बन जाती है, और ये मंत्र हर परिस्थिति को पार करने का यंत्र बन जाता है। दृढ़ता असंभव को संभव कर देती है। बहुत सुंदर सुंदर बाबा के महावाक्य हैं। तो इसलिए जब हम संपन्नता की ओर चले हैं, तो दृढ़ता के लिए दृढ़ता से चलते जाइए, हिम्मत मत हारिए। आएंगी रुकावटें, विघ्न भी आएंगे, कोई बात नहीं, सब पार हो जाएंगे। चलते चलो, चलते चलो, रुको नहीं। ओम शांति।